नमस्सिद्धेव्य ॐ नमस्सिद्धेव्य ॐ नमस्सिद्धेव्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् निट्टवियट्टकम्मम् वीरम्णमियूणपत्तसौवट्ठम् अणुभागस्स विहत्तिम् जहो वै संपरुवेमो। यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चूर्णी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिर्षभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक में अभी हम पृष्ठ संख्या 39 पर आ गए, 39। यहाँ अनुभाग विभक्ति का प्रकरण चल रहा है। अनुभाग विभक्ति में जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार की अनुभाग विभक्ति होती है, तो उसका एक जीव की अपेक्षा काल हम देख रहे हैं। उत्कृष्ट का हमने देखा, अब जघन्य का चल रहा है, उसमें भी हम मार्गणाओं में बात देख रहे हैं। अब यहाँ संयम मार्गणा बात चलेगी, नीचे का पैराग्राफ 39 पेज पर। संयम की अपेक्षा संयतों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। पहले हम देखते हैं संयतों में उसका स्वामित्व किसके होगा। हाँ, सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में तथा जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। ये संयत रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, तो असंयत हो जाएगा, संयता संयत हो जाएगा, तो एक अंतर्मूर्त के लिए। और उत्कृष्ट कुछ कम पूर्वकोटि है, पूर्वकोटि वाले जीव ने 8 वर्ष के बाद संयम धारण किया है, तो वो कम करके जो उसका उर्वरित जो है पूर्वकोटि में कुछ कम। इसी प्रकार सामायिक और छेदोपस्थापना संयतों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है कि अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। अजघन्य का एक समय कैसे होगा? हाँ, उपशम श्रेणी उतर कर सामायिक छेदोपस्थापना हो गया, नवे गुण स्थान में आते ही, और एक समय में मरकर देवों में गया तो वहां असंयत हो गया, तो एक समय घटित होगा। परिहार विशुद्धि संयतों में और सामायिक छेदोपस्थापना में जघन्य किसके होगा?
दो बार श्रेणी चढ़ते तो दूसरी बार भी चढ़ते।
हाँ, दो बार श्रेणी चढ़ के उतरा है और सपना भी शाही समय दृष्टि भी हुआ है, और फिर नौवे के अंत में अभी नौवे में नौवे
चढ़ के नौवे में आएगा,
ऊपर चढ़ के आएगा, क्योंकि दूसरी बार चढ़ के उतरेगा
एक समय रहेगा और हाँ। चला रहे।
शपक में
एक समय घटित नहीं होगा ना,
शपक के अंतिम समय में लेना। दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है और शपक के अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में आया है, ऐसा लेना।
अजगने का दिख रहे ना?
अच्छा, मैंने जघन्य पूछा था। नहीं नहीं नहीं, सामायिक छेदोपस्थापना का। हाँ, देखो, परिहार विशुद्धि संयतों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, ये परिहार विशुद्धि का जघन्य काल लेना है। और उसके जघन्य किसके होते तो हमने देखा था, दो बार उपशम श्रेणी और क्षपणा करके फिर परिहार विशुद्धि पाई उसने। और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है। इसी प्रकार और जघन्य अनुभाग विभक्ति का काल भी जानना चाहिए। सूक्ष्म सांप्रायिक संयतों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये तो सर्वत्र हमने घटित किया था। और जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, अजघन्य का जघन्य एक समय कैसे होगा?
श्रेणी चढ़ेगा सुख दुख,
श्रेणी चढ़ के उतरने वाला एक समय में,
नहीं तो चढ़ के भी सुप्रसाद में जाएगा, एक समय के लिए रहेगा और मरण हो जाएगा।
सूक्ष्म सांप्राय में एक एक समय के लिए रहा, चढ़ते समय या उतरते समय, उसको अजघन्य कहेंगे, एक समय में मर गया। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये दसवें गुण स्थान का जो अंतर्मूर्त है उतना है। यथाख्यात संयतों में कषाय रहित जीवों के समान भंग होता है, ग्यारहवें गुणस्थान के समान होता है। उसमें जघन्य कहो या अजघन्य कहो, उनके लिए जघन्य अजघन्य, वो एक समय में मरने वाले का एक समय होगा और पूरे रहने वालों का अंतर्मूर्त होगा। संयता संयतों में मोहनीय की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्व कोटि है। ये संयता संयत का जघन्य और उत्कृष्ट काल लिया है और उसमें वो जघन्य घटित किया है, और जघन्य को भी ऐसा ही करेंगे। उसमें भी दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, क्षपणा की है, वो पांचवें में आया है, ऐसा जीव ले सकते हैं तो जघन्य होगा और अन्य सारे अजघन्य होगा। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का भी काल इसी प्रकार जानना चाहिए। असंयतों में मोहनीय की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, असंयत। असंयत में कौन कौन लेना? असंयतों में जघन्य किसके होगा? हाँ, पहले से चौथे गुणस्थान असंयत है, उनमें जघन्य किसके होगा? एक इंद्रियों को, शायिक समय दृष्टि से भी एक इंद्रियों में जो है सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त के, लब्धि अपर्याप्त के, उसका जघन्य होगा। तो यहाँ इसलिए क्या कहा, जघन्य कहा गया, जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि जघन्य करता है तो अंतर्मूर्त तो जघन्य रहेगा, और उत्कृष्ट काल उसमें उत्कृष्ट पने रहने का काल भी अंतर्मूर्त। और अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, क्योंकि वो सूक्ष्म के अलावा जो अन्य पर्याय हैं उसमें असंख्यात लोक रहने का काल है, इसलिए उसको असंख्यात लोक कहा। विशेषार्थ, यहां जिन संयमों में क्षपक श्रेणी संभव है उनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, कारण कि उस संयम के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है। मात्र संयतों के सूक्ष्म सांपराय करना, सूक्ष्म सांपराय के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है। सूक्ष्म सांपराय, यहां भी सांपराय बराबर करना, सूक्ष्म सांपराय संयम, सामायिक संयम और छेदोपस्थापना संयम का जघन्य काल एक समय होने से, यानी इस मार्गणा का जघन्य काल एक समय, क्योंकि उस गुणस्थान में पहुंचते एक समय में मरेगा तो एक समय घटित होता है। इनमें सूक्ष्म सांप्राय में तो चढ़ते समय भी एक समय होगा, परंतु सामायिक छेदोपस्थापना में तो उतरते समय, जब वो सूक्ष्म सांप्राय में से नौवे में आया है तब एक समय में मर गया है, तो वहां एक समय घटित होगा। इसलिए इसमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एक समय कहा है। इन सब में अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है। अपनी अपनी स्थिति यानी अभी जो सामायिक छेदोपस्थापना का रहने का अपना अपना उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, जघन्य कितनी है, उसको अपनी अपनी स्थिति कहा। यथाख्यात संयम अकषायी जीवों के होता है, इसलिए इसमें काल का विचार वो कषाय जीवों के समान जानने की सूचना की है। ग्यारहवें गुण स्थान वाले के जगन्य है तो भी एक समय और अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट है तो भी एक समय और अंतर्मूर्त। अब शेष तीन रहे परिहार, विशुद्धि, संयम, संयमासंयम और असंयम। सो इनमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा, क्योंकि इनका जघन्य काल अंतर्मूर्त है, इनमें रहने का जघन्य काल अंतर्मूर्त तथा इनका उत्कृष्ट काल प्रारंभ के दो का, कौन से प्रारंभ के दो, परिहार विशुद्धि और संयमासंयम, कुछ कम पूर्वकोटि होने से उनमें अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है, और असंयतों में अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल जिस प्रकार मत्य ज्ञानियों में असंख्यात लोक प्रमाण घटित करके बतलाए हैं, उसी प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। दर्शन की अपेक्षा चक्षुदर्शनियों में मौनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। चक्षुदर्शनी में कब होगा? हाँ मयंक भाई, मंदाबेन आप कहेंगे चक्षुदर्शनियों में जघन्य किसके होगा? दसवें के अंत में। हाँ वो चक्षुदर्शनी तो है ही ना। हाँ अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण, देखो क्षुद्र भव ग्रहण वाले के भी चक्षुदर्शनी, कौन से क्षुद्र वाले लेना, कौन से जीव लेना, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय लब्धि पर्याप्त, और उत्कृष्ट काल 2000 सागर है। यहाँ त्रस को नहीं लिया है, चक्षु इंद्रियों को लिया है, इसलिए 2000 सागर। जैसे हम पंचेंद्रिय पर्याप्त में लेते हैं ना, पंचेंद्रियों को लेते हैं वैसे। वो चक्षु दर्शनियों में मौनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, और चक्षु वालों को भी वही लेना, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अनादि अनंत, क्योंकि सभी अचक्षुदर्शनी तो है ही, किसी भी पर्याय में चले जाओ तो ये अचक्षुदर्शनी है सब जीव, तो अजघन्य ने जब तक दसवें में अंत में नहीं पहुंचा तब अजघन्य कहेंगे, तो उत्कृष्ट जघन्य और उत्कृष्ट काल अनादि अनंत और अनादि शांत है। कहां पर? हाँ ऊपर जो असंख्यात लिया है, असंख्यात लोग, क्योंकि किस में लिया, वो प्रारंभ के दो का कुछ कम, कौन किसके बाद, हाँ असंयम मार्गणा है, तो असंयतों में अगर लगातार रह गए अनादि अनंत तो सूक्ष्म एकेंद्रिय में भी जाएंगे, तो उनका जघन्य हो जाएगा। असंयतों की अपेक्षा जघन्य कहाँ पाया जाता है? सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों में, इसलिए सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक। हाँ वही मैं बता रही हूँ, यदि अजघन्य किसमें पाए जाएंगे, सूक्ष्म एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के अलावा अन्य में चला जाएगा, या सूक्ष्म एकेंद्रिय में भी उसने कर दी और फिर लगातार जघन्य किया नहीं और अजघन्य ही रहा, और फिर असंख्यात लोग के बाद फिर वो सूक्ष्म एकेंद्रिय में जाएगा ही और जघन्य करेगा ही। हाँ, आपका प्रश्न है अचक्षु दर्शनियों में उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि अचक्षु दर्शन का जघन्य दसवें गुण स्थान के अंत में होता है। अचक्षु दर्शनियों का जघन्य कब होगा? इसीलिए जघन्य कब होता है उसके अलावा बाकी अजघन्य है। नहीं समझे, फिर से देखो। नहीं, अचक्षु दर्शन कहाँ तक है, कौन से गुणस्थान तक? बारहवें तक, और असंयत चौथे तक। तो चार गुणस्थानों तक जघन्य किस जीव को होगा? चार गुणस्थानों तक जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त को। और बारह गुणस्थान तक जघन्य किसके होगा? सूक्ष्म सांप्राय के अंत में। वो सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय छोड़कर जो कुछ है वो सारा अजघन्य है उसके लिए। अचक्षु दर्शनियों के लिए अजघन्य कब तक है? वो ग्यारहवें में भी गया तो भी अजघन्य ही कहेंगे। उसका जो मिनिमम पॉसिबल जघन्य है सूक्ष्म सांप्राय के अंत में, उसके अलावा वो सारा अजघन्य है। और असंयत के लिए जघन्य छोड़कर बाकी अजघन्य है। तो अकेला निगोध नहीं लेना, अन्य कायिक लेना है ना, अन्य कायिकों में जाता है ये, हमने एक इंद्रियों में बहुत विस्तार से देखा। देखो स्वामित्व नहीं, अच्छा हाँ, यानी सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्त को छोड़कर अन्य में वो असंख्यात लोक तक ही रहता है। उसमें ऐसा भी हमने लिया, किसी ने जघन्य किया फिर लगातार वो अजघन्य रहा।
अचक्षु दर्शनियों में अनादि अनंत, तो हम अभव्य की अपेक्षा लेते
हैं, अभव्यों की अपेक्षा अनादि अनंत, और भव्यों की अपेक्षा अनादि शांत। अवधि दर्शन वालों में अवधि ज्ञानियों के समान भंग होता है। तो अवधि ज्ञानी में भी सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय में जघन्य है और उसके अलावा अजघन्य है। तो अवधि ज्ञानी का जो उत्कृष्ट काल है, हमने देखा ना मति शुद्ध अवधि में, अभिनिबोधिक और शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान में, उसका लंबा काल घटित करेंगे। सादिक 66 सागर ऐसा कुछ लिखा था। देखो विशेषार्थ, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय में भी चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन होते हैं, इसलिए इनमें जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय का। चक्षु दर्शन का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल 2000 सागर है। अतः इसमें अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है।
क्षुद्र भव ग्रहण में तो उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं होती है, तो भी चक्षु दर्शन कहा है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो क्या कहते हैं, ये चक्षु दर्शन को अचक्षु दर्शन को जो कुछ है तो अपर्याप्त जीवों में भी कहा है, परंतु क्योंकि वहाँ क्षोभशम पाया जाता है, ज्ञान दर्शन का विशिष्ट क्षोभशम वहाँ पाया जाता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में भी चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन कहेंगे, विग्रह गति में भी कहेंगे। देखो चक्षु दर्शन का जघन्य काल चक्षु, देखो हम जब पर्याप्त अपर्याप्तों के प्राण घटित करते हैं, तो अपर्याप्तों में कौन से प्राणों को नहीं लेते हैं? अभी हम संगी पंचेंद्रिय की बात करेंगे। संगी पंचेंद्रियों के 10 प्राण होते हैं, 10 प्राणों में से तो 5 तो इंद्रिय प्राण है, 3 बल प्राण है, 1 श्वासोश्वास और 1 आयु। अपर्याप्तों में इनमें से किसको नहीं लेते?
श्वासोश्वास
को नहीं लेते, और
मनोबल और वचन बल,
को नहीं, बाकी सबको लेते हैं, पांचों ही प्राणों को लेते हैं ना, इंद्रिय प्राणों को। तो वहाँ तो अभी इंद्रिया बनी नहीं, तो इंद्रिय प्राण कैसे?
प्रोसेस चालू हो गया तो इंद्रिय,
वहाँ भी क्षोभशम है ना, क्षोभशम चल रहा है ना, कर्मों का उतना क्षोभशम है तो वहाँ प्राण भी कहेंगे और यहाँ ज्ञान दर्शन सब कहेंगे।
पर्याप्ति पूरी हुई या नहीं,
मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है कि नहीं है? है, तो उसके दर्शन होगा कि नहीं वहाँ पर, के दर्शन चुप बैठेगा? ये पर्याय निरंतर चल रही है, ज्ञान दर्शन की पर्याय निरंतर होती है। तो वहाँ अभी उसके इंद्रिया नहीं बनी है, बाह्य उपयोग कुछ नहीं है, ऐसा अगर हम कहते हैं तो भी वहाँ उसका क्षोभशम चल रहा है, चक्षु दर्शन है चक्षु दर्शन का। जो जिस पर्याय में है उसको वैसा कहेंगे हम। देखो, जब हम देख रहे हैं तभी चक्षु दर्शन कहेंगे क्या? उस जीव को चक्षु दर्शन हर समय चल रहा है ऐसा कहेंगे? तो उपयोग को नहीं कहा दर्शन, यानी जब जिस समय उपयोग इंद्रियों के, चक्षु इंद्रियों के द्वारा जा रहा है उस समय उस जीव को चक्षु दर्शन होता है ऐसा नहीं कहा। संगी पंचेंद्रिय जीव है, चतुरेंद्रिय जीव है, असंगी पंचेंद्रिय है, तो उसको तो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन हर समय है ऐसा कहेंगे, उसको मति शुद्ध ज्ञान है ऐसा कहेंगे। वो तो उपयोग रूप लेंगे, कभी मति ज्ञान उस समय शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है तब मति ज्ञान है, उपयोग रूप।
अनाकार उपयोग तो हम अचक्षु दर्शन में भी देखते हैं और चक्षु दर्शन में भी देखते हैं,
उसकी बात नहीं है। उपयोग रूप है कि नहीं चक्षु दर्शन? जब ज्ञान उपयोग है तो दर्शन उपयोग है क्या? नहीं है, नहीं है, क्रमिक है। परंतु दर्शन गुण की पर्याय है, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन उस समय भी चल रहा है। लब्धि उपयोग मिलकर होते ना, क्षोभम ज्ञान, तो लब्धि है तो उसको ज्ञान कहेंगे, वहां पर दर्शन को भी ऐसा ही कहना है। देखो, ये चक्षु दर्शन का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण, और उत्कृष्ट काल 2000 सागर, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल। त्रस पर्याय का काल है साधिक 2000, और अकेले चक्षु इंद्रिय चक्षु दर्शन वालों का है 2000 सागर। वैसे त्रस पर्याप्तों को भी लिया था ना, तो ये चक्षु चतुरेन्द्रिय पंचेन्द्रियों को भी लेना उसमें ऐसा। अतः इसमें अजगन्य अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। चक्षु दर्शन सॉरी अचक्षु दर्शन भव्य और अभव्य दोनों के होने से उसमें अजगन्य अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट काल अभव्यों के अनादि अनंत और भव्यों के अनादि शांत कहा है। अवधि दर्शन वालों का भंग अवधि ज्ञानी जीवों के समान है, यह स्पष्ट ही है। लेशा की अपेक्षा, कृष्ण नील और कापोत लेशा वालों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। एक कृष्ण नील कापोत वालों में जगन्य किसके लेना?
एक इंद्रिय लब्धि
पर्याप्त। हाँ, एक इंद्रिय वाले के
सूक्ष्म लब्धि पर्याप्त।
तो जगन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल एक समय, ये लेशा भी पलटती है ना, इसलिए जगन्य काल एक समय घटित होगा, और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ अधिक 33 सागर कृष्ण के लिए, क्योंकि वो अजगन्य के साथ आया है, 33 सागर वाले नरक में सातवें नरक में है और उसी लेशा से बाहर आता है, तो कुछ अधिक कहा? कुछ अधिक 17 सागर और कुछ अधिक 7 सागर है। तेजो लेशा और पद्म लेशा वालों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल तेज और पद्म में, अब यहां तो एकेंद्रिय नहीं ले सकते, अंतर्मूर्त। जघन्य अनुभाग विभक्ति किसके होगी, अभी थोड़ा सोचना है ना।
तेजो में तो दो बार श्रेणी चढ़ के,
हाँ, दो बार उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा है, एक क्षपणा की है, तो उसके जघन्य होगा। तो उस लेशा में रहने, उस जघन्य के साथ उस विशिष्ट लेशा में अंतर्मूर्त तक रहेगा ही, इसलिए वहां कहा जघन्य काल अंतर्मूर्त। आप कहेंगे मर जाएगा तो पीत लेशा में मर जाएगा
तो भी मनुष्य में आएगा,
तो पीत में ही जाएगा। समय दृष्टि है ना, एक समय दृष्टि बना दिया उसको, पीत में मरेगा पीत में जन्मेगा, पद्म में मरेगा पद्म में जन्मेगा, एक तो बात ये है। और वहां क्षपणा, इन्हें क्षपक श्रेणी तो चढ़ेगा नहीं, अभी क्षपणा तो पूरी हो गई उसके, फिर उससे और जघन्य जो है उससे और जघन्य तो नहीं हो सकता नहीं। उसका उसमें मिनिमम पॉसिबल उसने पा लिया है, इसलिए उस ले विशिष्ट लेशा में रहने का काल यहाँ लेना। तो जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ अधिक दो सागर कहाँ का लेना, सौधर्म ईशान, और कुछ अधिक 18 सागर ये पद्म के लिए सहस्रार को। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, अब जो अजघन्य के साथ तेजोलेशा में जो जघन्य नहीं है उसके अलावा सारा अजघन्य है अंतर्मूर्त, और उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ अधिक 2 सागर और कुछ अधिक 18 सागर। शुक्ल लेशा वालों में मोनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। शुक्ल में किसको लेना, अभी सूक्ष्म सांप्राय का अंतिम समय श्रेणी में शुक्ल लेशा ही होती है। अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, इन्हें लेशा बदलने की अपेक्षा से, और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर। सर्वार्थ सिद्धि में जाने के पहले और आने के पश्चात एक अंतर्मूर्त तक शुक्ल लेशा होगी। विशेषार्थ, कृष्णादि 3 लेशाओं में जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य काल एकेंद्रिय की तरह गठित कर लेना चाहिए, तथा अजघन्य अनुभाग का उत्कृष्ट काल प्रत्येक लेशा के उत्कृष्ट काल की तरह है, यह स्पष्ट ही है। एक जीव की अपेक्षा तेजोलेशा और पद्मलेशा का जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उतना ही उनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा, यानी उस लेशा का जघन्य और उत्कृष्ट काल लिया। शुक्ल लेशा में क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में मुंह का जघन्य अनुभाग होता है, अतः उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल शुक्ल लेशा के एक जीव की अपेक्षा काल को ध्यान में रखकर कहा है, यानी मिनिमम अंतर्मूर्त और मैक्सिमम साधिक 33 सागर। भव्य की अपेक्षा, ये भव्य मार्गणा की अपेक्षा भव्य और अभव्य ऐसे दो प्रकार के जीव हैं। भव्यों में ओघ के समान भंग है, क्योंकि सूक्ष्म सांप्राय होगा उनमें, तो जैसे ओघ में कथन किया है जघन्य वो एक समय के लिए, जघन्य का जघन्य और उत्कृष्ट एक समय, और अजघन्य का अभी भव्य है तो अनादि शांत कहेंगे। परंतु भव्य में अगर हम भेद करेंगे ना, कोई भव्य ऐसे होते हैं कि अभव्य सम भव्य, हाँ तो उसमें कहेंगे, परंतु यहाँ हम अनादि शांत कहेंगे, क्योंकि अभी तक हमने भव्य में अनादि शांत बताया। भव्य में ओग के समान भंग है, और अभव्यों में मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। यानी अजघन्य किया और अंतर्मूर्त में फिर जघन्य किया तो अंतर्मूर्त हो जाता है, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक। विशेषार्थ, ओग से जिस प्रकार काल को गठित करके बतलाए हैं उसी प्रकार भव्यों में गठित कर लेना चाहिए। एकेंद्रियों में जघन्य अनुभाग होने के बाद वह अंतर्मूर्त काल तक अवश्य रहता है, पहले हमने अगर एक इंद्रियों की अपेक्षा जगन्य का जगन्य काल कितना ले सकते हैं? एक इंद्रिय मार्गणा में अगर घटित करना, एक इंद्रिय की मार्गणा चल रही, जगन्य का काल मिनिमम काल कितना?
एक समय,
एक समय कैसे
जगन्य किया? हाँ, एक समय में मरण
हुआ, मरकर अन्य इंद्रियों वाले में उत्पन्न हुआ तो हो सकता है। अब यहाँ अभव्य है, अभी कहीं किसी भी इंद्रिय में चला जाओ तो उसका तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी गया है, कहीं भी गया है, जब तक वो बढ़ाकर नहीं बांधता है तो उसको जगन्य रहेगा। परंतु यहाँ तो अभव्य की बात है, इसलिए वो तो अंतर्मूर्त काल तक तो रहेगा ही, इसलिए अभव्यों में जगन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा। इनमें अजगन्य अनुभाग का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है, यह स्पष्ट ही है, यह हर जगह हम देख के आए हैं। देखो, हमने उत्कृष्ट का अंतर देखा था ना, उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का उत्कृष्ट अंतर। अभी हम जगन्य की बात देख रहे हैं, तो उत्कृष्ट अंतर कितना देखा था याद है? उत्कृष्ट का उत्कृष्ट अंतर
की
किसकी अपेक्षा?
ओह
की अपेक्षा, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। क्यों? पंचेंद्रियों में उत्कृष्ट का बंध किया था, उत्कृष्ट किया था, उसके बाद अनुत्कृष्ट हुआ था, और फिर एक इंद्रियों में तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण भटका, फिर पंचेंद्रियों में जाकर दोबारा जब बंध करेगा तो उसका फिर उत्कृष्ट होगा, तब तक बीच में अनुत्कृष्ट रहेगा। अब यहाँ जघन्य में ऐसा नहीं है, जघन्य में तो जघन्य करने वाला तो अभी यहाँ अभव्य की बात चल रही है। एक इंद्रिय में जघन्य किया, कौन से एक इंद्रिय किया? किसने? सूक्ष्म एक इंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक में, फिर वो अन्य एक इंद्रियों में भटका और दोबारा सूक्ष्म में एक इंद्रिय में अपर्याप्त में आएगा तो फिर जघन्य करेगा। तो अजघन्य कितने काल तक रहा? तो असंख्यात लोक तक। वहां भी अन्य कायिकों में ऐसा कहा है ना, यानी वहां निगोद की अपेक्षा वहां ली थी। देखो, सम्यक्त्व की अपेक्षा, सम्यक्त्व मार्गणा चलेगी अभी। सम्यक दृष्टियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, ये तो दसवें गुणस्थान के अंत में, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त। सम्यक दृष्टि हुआ और अंतर्मूर्त में मिथ्या दृष्टि हुआ, यक्ष पक्ष में चढ़ा ऐसा कहा हो, मिथ्या तो में चला जाएगा तो भी उसको सम्यक तो मार्गणा तो नहीं रहेगी, वो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, मार्गणा बदल जाएगी उसके। और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 99 सागर हैं,
ये 99 सागर कैसे हो जाएगा
वहां कुछ? हाँ देखो, हाँ, अजघन्य अनुभाग विभक्ति, हाँ, यानी जब जघन्य, जघन्य कब करेगा? सूक्ष्म सांप्राय में। अब वो सम्यक दृष्टि रहना चाहिए, पहले उपशमिक सम्यक दृष्टि हुआ, फिर वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, कितने कितने रहा काल तक? 66 सागर तक। 66 सागर पूरे होते ही क्षायिक हो गया,
अच्छा,
और क्षायिक करके कुछ काल के बाद वो फिर
नहीं, वो सिद्धि में उत्पन्न हुआ।
हाँ वही तो, क्षायिक होने के बाद उस भाव में फिर वो देव में गया, 33 सागर में गया,
अच्छा,
और वहाँ से आए, वहाँ से पूर्व कोटि में आए, पूर्व कोटि के अंत में जाके वो दसवा गुण स्थान चढ़ेंगे, क्षपक श्रेणी चढ़ेंगे, और फिर अल्पकाल में अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाएंगे। तो ये साधिक में ले लेना सारा। अथवा कुछ अधिक 66 सागर हैं, ये पहले 66 सागर लिखा था, आपको याद होगा तो स्वामी को, कुछ अधिक 66,
इसीलिए मैंने पूछा ये 99 बताया ना, तो उसमें सबर से दिखा।
क्षायिक सम्यक दृष्टियों में ये कुछ अधिक में वो 66 सागर तक वेदक सम्यक्त्व में रहा, फिर वो क्षायिक भी हुआ, क्षपक श्रेणी चढ़ा, इस तरह से लेना। क्षायिक सम्यक दृष्टियों में, अभी क्षायिक की बात चल रही है। मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय, वो तो क्षपक श्रेणी में लेना है, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्षायिक होने के अंतर्मूर्त में वो क्षपक श्रेणी जड़ा, और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 33 सागर है। वेदक समय दृष्टियों में मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट करना, क्या कहते हैं, वेदक समय दृष्टियों में मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वेदक समय दृष्टि में जघन्य कब होगा? हाँ अरविंद भाई, याद अरविंद भाई तो नहीं थे, प्रतिभा आई,
तो वह सीढ़ी चढ़ के उतरा है और जो सपड़ा कर रहा है उसके अंतिम समय में, वेदक समय वेदक के अंतिम समय,
वेदक के अंतिम समय में, यानी किसको अंतिम समय नहीं लेना, कृतकृत्य वेदक लेना। यहाँ एक समय नहीं कहा है, देखो क्या कहा, वेदक समय दृष्टियों में मुनि कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। एक बार कृतकृत्य वेदक होता है तो उसके अंतर्मूर्त प्रमाण निषेक बाकी है, तो वहां उसका अनुभाग जघन्य ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। वहां पर सम्यक प्रकृति जो है या कोई अन्य भी मोनी की सब लेना, यहाँ मूल प्रकृति की बात नहीं, बात चल रही उत्तर की नहीं। तो यहाँ मोनी का जो अनुभाग है, क्षपणा के काल में तो उसने अनुभाग घटाया था, या एक बार कृतकृत्य वेदक होने के बाद यहाँ अनुभाग कांडक घात नहीं होते हैं, उसके पहले हुए थे तभी तो जघन्य कर दिया उसने। अभी कृतकृत्य वेदक का जो अंतर्मूर्त है तब तक उसको वेदक सम्यक दृष्टि कहेंगे, तो उसका जघन्य अंतर्मूर्त तक रहेगा, बाद में नष्ट ही हो जाएगा, बाद में वो वेदक सम्यक दृष्टि नहीं रहेगा, बाद में उसी को क्षायिक कहेंगे हम। इसलिए ये जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त का ख्याल में आई ये बात, जघन्य किसके होता है यदि हम ख्याल में लेते हैं, ये तो कृतकृत्य वेदक के होता है, और कृतकृत्य वेदक का काल कितना है, एक समय होगा कि नहीं होगा? नहीं, किसी गति की अपेक्षा बात करनी है तो हो सकता है, क्योंकि कृतकृत्य वेदक का एक समय बाकी है और देव में उत्पन्न हुआ, तो वहां देवों में वेदक समय तो अगर लेना है तो हो सकता है,
मनुष्य में नहीं होगा एक समय,
मनुष्यों में फिर एक समय में मर कर वो अन्य गति में चला गया, ऐसा ले सकते हैं।
अच्छा।
परंतु मनुष्य में ऐसे ही लेना पड़ेगा, कृतकृत्य वेदक हो जाता है तब, अब वहाँ बात नहीं है, अपनी मार्गणा केवल वेदक है। एक समय तो बच जाएगा ना उसका, एक समय के पश्चात जाएगा ना कि नहीं जाएगा, वो कौन से गति में किस काल के बाद जाता है ऐसा ही कुछ है ना उसमें,
देव गति में।
देव वेदक समय दृष्टि अपनी इतनी मार्गणा चल रही, कौन से गति वाला ये यहाँ नहीं है, इसलिए अंतर्मूर्त कहा। तथा अब वेदक में अजगन्य, ये जगन्य को छोड़ना कृतकृत्य वेदक वाले को, तथा अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि अंतर्मूर्त के पश्चात क्षायिक होया या उसका सम्यक पे ही छूट गया, जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर हैं, क्योंकि पूरे 66 सागर रहता है
तो
क्षायिक हो ही जाता है। उपशम समय दृष्टियों में मोनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये जघन्य किसके होगा?
श्रेणी में से उतर कैसे?
हाँ, दो बार श्रेणी उतरा ना उसको। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि इसका काल ही अंतर्मूर्त है ना, इसलिए सासाधन सम्यक दृष्टियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छह आवली का है। इसी प्रकार अजघन्य अनुभाग विभक्ति का काल भी है, जघन्य के साथ आया तो सासाधन का जो काल है वही उसका काल, कोई अजघन्य के साथ आता है तो उसका भी वही काल। सम्यक मिथ्या दृष्टियों में
ये जो दो बार श्रेणी उतर के चढ़ के उतरता है वो भी सासाधन में नहीं जा सकता है ना, कि जा सकता है?
हाँ, जा सकता है। दो मत है उसके बारे में, एक तो कहते द्वितीय उपशम वाला नहीं जाता है और एक मत है जा सकता है। इसी प्रकार अजघन्य अनुभाग विभक्ति का भी काल है, नहीं सॉरी, सम्यक मिथ्या दृष्टियों में हम पढ़ रहे थे, मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार अजघन्य अनुभाग विभक्ति का भी काल है, यानी जो जघन्य के साथ आया है और दूसरा होगा वो अजघन्य के साथ आया है, तो तीसरे गुणस्थान का जो काल है वही उसका काल है। मिथ्या दृष्टियों में मोहिनी कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है, जैसे हमने मत्स्य ज्ञानी में देखा था, अभी एकेंद्रिय में वगैरह देखा था। विशेषार्थ सम्यक दृष्टि और क्षायिक समय दृष्टि के क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक के अंतिम समय में जघन्य अनुभाग होता है, अतः उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल मोटे तौर पर दोनों के जघन्य और उत्कृष्ट काल की तरह जानना चाहिए, यानी सम्यक दृष्टि का जघन्य और उत्कृष्ट काल और क्षायिक सम्यक्त्व का जघन्य और उत्कृष्ट काल। वेदक सम्यक्त्व में दो बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उससे उतरकर दर्शन मुनि का क्षय करके कृतकृत्य भाव को प्राप्त हुए जीव के प्रथम समय में मोह का जघन्य अनुभाग होता है, पहले ही समय में हो जाता है और उतना ही रहता है, तो अंतर्मूर्त तक रहेगा, अतः उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। तथा उपशम सम्यक्त्व में दोबारा उपशम श्रेणी चढ़कर ग्यारहवें गुणस्थान में वर्तमान जीव के जघन्य अनुभाग होता है, अतः उसका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अब यह मरण होगा तो क्या होगा?
वो तो चौथे गुणस्थान में जाएगा तो अवधेय जीव हो जाएगा ना,
उसका सम्यक तो उपशम ही रहेगा ना। अपनी मार्गणा उपशम सम्यक तो की है, ग्यारहवें में मर भी गया तो भी उसका द्वितीय उपशम ही चल रहा है, वहां देव की अपर्याप्त अवस्था में भी उसका द्वितीय उपशम चल रहा है, यानी उसका अंतर्मूर्त तो घटित होगा ही। हम अन्यत्र हमने अगर अकषायी जीवों की बात की थी तो वहां तो एक समय घटित करके दिखाया था, यहां वो बात नहीं होगी, अतः उसका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। जैसे हमने कृतकृत्य वेदक में देखा, पहले ही समय से जघन्य होता है और अंतर्मूर्त तक कृतकृत्य वेदक रहेगा तो अंतर्मूर्त तक जघन्य रहेगा, ऐसे ही दूसरी बार उपशम श्रेणी चढ़ के जो ग्यारहवें में आया है उसने जघन्य कर दिया है, अब उतरते समय और कुछ जघन्य नहीं होने वाला है।
उतरते समय जब क्रोध मान माया लोक का उदय हो जाएगा तभी क्या उसका अनुभव बढ़ेगा?
बढ़ने का सवाल नहीं है, यह घटने की बात चल रही है ना अपनी,
क्योंकि जगन्या काल और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्ति बताया,
अनुभाग बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि मोहनीय का अनुभाग कब बढ़कर बंधेगा, जब बंधेगा तब। अब जो सम्यक दृष्टि होता है उसका अनुभाग बढ़कर कभी नहीं बंधेगा, भले चढ़ रहा है या उतर रहा है। उपशम श्रेणी में सत्ता में पड़ा है ना अनुभाग सारा, उसी का उदय भी हो रहा है, और जो बंधेगा।
यहाँ पे 11 गुणस्थान बताए ना, इसलिए मैंने पूछा।
11वें गुणस्थान के पहले समय में जघन्य क्यों हुआ, क्योंकि उपशम श्रेणी चढ़ते समय उसने जघन्य कर दिया। 11वें गुणस्थान में कोई अनुभाग घटने का कार्य नहीं हो रहा।
यहाँ पे जो ये काल बताया ना, वो 11वें गुणस्थान का काल बताया, इसीलिए।
नहीं, 11वें गुणस्थान का काल नहीं कहा। 11वें गुणस्थान में वर्तमान जीव के जघन्य अनुभाग होता है, बस इतना ही बताया।
क्योंकि यहाँ पे ये काल है ना, खाली 11वें गुणस्थान का अंतर्मुख बताया, इसलिए पूछा।
ऐसा नहीं कहा। कृतकृत्य वेदक में पहले समय में ही हो जाता है, वैसे यहाँ 11वें गुणस्थान में जघन्य अनुभाग होता है। नहीं, जब तक अभी 11वें गुणस्थान में जघन्य हो गए ना, अभी उसका जब तक उपशम सम्यक तो चल रहा है, तब तक उसका जघन्य रहेगा। अब इसके बाद बढ़ेगा नहीं उसका। निकालो उपशम सम्यक्त्व का स्वामित्व जगन्य का, 17 के बाद कहीं होगा, 20 नहीं ज्यादा है, 23 नहीं, 23 से तो काल शुरू हुआ जगन्य का स्वामित्व, 18-19 पर कहीं मिलेगा। देखो 19 पृष्ठ पर, वो बीच में वेदक सम्यक दृष्टि, उसके नीचे 3-6 इसी प्रकार उपशम सम्यक दृष्टि के जानना चाहिए। इसी प्रकार ने कैसे, वेदक सम्यक दृष्टि की तरह। वेदक सम्यक तो में क्या कहा था, इसे 2 लाइन ऊपर, 2 बार उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरकर दर्शन मोह का क्षय करके कृतकृत्य वेदक। अब उपशम में क्या विशेषता है, इतनी विशेषता है मिला ना कि उपशांत कषाय गुणस्थान के काल में विद्यमान अथवा नीचे उतरकर विद्यमान उपशम सम्यक दृष्टि जीव के मोहनीय कर्म का महानी हुआ, मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। उतरकर भी लिया ना, अर्थात वह उपशम सम्यक दृष्टि 11वें गुणस्थान में हो या उससे नीचे उतर गया हो, उसके मोहनीय कर्म का जघन्य अनुभाग होता है। 4थे तक भी क्यों न उतरा, उसको जघन्य ही कहेंगे।
तो क्या हमने देखा था कि सम्यक दृष्टि को अनुभाग कम ही होता है, तो ये जो उपशम सम्यक तो तभी छूट जाएगा और 7वें या 6ठे या 5वें या 4थे में जाता है
अनुभाग, वो उतना ही रहेगा,
पीछे निरंतर इतना ही रहेगा।
हाँ, जब तक कोई क्रिया नहीं होती, सम्यक दृष्टि बना रहा ना, इतना ही रहा। मिथ्यात्व में गया तो अनुभाग बढ़कर बांधेगा, उसकी बात नहीं यहाँ पर।
नहीं तो जगन्य और उत्कृष्ट काल तो बढ़ जाएगा ना, अंतर्भूत से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि
उपशम सम्यक तो कब तक रहेगा।
अच्छा, उपशम सम्यक
बाद में वो वेदक हो जाएगा, तो वेदक में हमने जगन्य उसी को लिया है, 2 बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है, उसमें तो और क्षपणा भी कर दिए, यह क्षपणा वाला नहीं ले सकते हैं, और द्वितीय उपशम वाला लिया, इसलिए अनंतानुबंधी की विषय योजना भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो कर चुका है ऑलरेडी। ये कहाँ पढ़ रहे थे हम, विशेषार्थ में है ना, उपशम सम्यक्त्व में बात देख रहे थे हम, यानी वो 11वें गुणस्थान में वर्तमान जीव के। अब वो जीव नीचे उतरा तो भी जगन्य ही रहेगा, ये बात मुख्य बात है। हाँ, नीचे से ये 11वें से उतरने वाला भी जगन्य ही रहेगा उसका। ये चौथे तक क्यों ना आए? जब तक उपशम सम्यक तो चल रहा है तब तक हमारी मार्गना बनी है, इसलिए उसको लिया, इसलिए उसका काल कितना कहा? जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त, जो उपशम सम्यक तो का काल है, रिमेनिंग काल ग्यारहवें से लेकर अभी जो रिमेनिंग काल है उपशम सम्यक तो का, वो अंतर्मूर्त होगा। और अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल मोटे तौर पर दोनों सम्यक्तवों के जघन्य और उत्कृष्ट काल की तरह जानना चाहिए। यानी तो अंतर्मूर्त ही होगा ना, अजघन्य के साथ उपशम सम्यक दृष्टि है, अजघन्य है तो उपशम सम्यक्त्व का जो काल है उसका वही जघन्य और उत्कृष्ट काल कहेंगे। सासाधन सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व का जितना जघन्य और उत्कृष्ट काल है उतना ही उनमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। अभी हमने देख लिया उपशम सम्यक्त्व का 19 में, वहीं पर सासाधन के भी,
सासाधन में एक समय और छह अवली
नहीं, हमें काल तो पता है उसका, हम स्वामित्व देखेंगे ना। सासाधन का जघन्य का स्वामित्व वही लेना है, उपशम श्रेणी चढ़ के उतरा हुआ जीव लेना। हाँ, इसी प्रकार यानी वो जो सम्यक जैसे उपशम सम्यक दृष्टि ही सासाधन में आया है, इसलिए उसी प्रकार उसको समझना है। हाँ, अब हम आते हैं 43 पृष्ठ पर। सासाधन सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य और उत्कृष्ट काल है उतना ही उसमें जघन्य और अजघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल होता है। वो गुणस्थान का जो काल है वही जघन्य का भी काल और अजघन्य का भी काल। जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होने से मिथ्या दृष्टि के, ये मिथ्या दृष्टि की बात चल रही है, सम्यक्त मार्गणा में मिथ्या दृष्टि, उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहा, तथा मिथ्यात्व में अजघन्य अनुभाग कम से कम अंतर्मूर्त काल तक और अधिक से अधिक असंख्यात लोक प्रमाण काल तक रहता है, यह देखकर यहाँ वह उक्त प्रमाण कहा है। संगित्व की अपेक्षा यानी संगी मार्गणा, संगी मार्गणा के कितने भेद है? दो। कौन से? संगी और असंगी। और तेरहवें चौदहवें गुणस्थान को क्या कहेंगे? तो उसका तीसरा भेद भी कहना पड़ेगा। कोई संगी है, कोई असंगी है, और कोई संगी असंगीपना से रहित है, जो तेरहवें चौदहवें गुणस्थान वाले। जीव समास में तो उनको संगी पंचेंद्रिय कहेंगे, और संगी मार्गणा में उनको इनसे रहित कहेंगे। मार्गणा कौन सी चल रही है उसके अनुसार उसका, उसी जू को उसमें हम डालेंगे, उस ग्रुप में चले जाएंगे। तो संगीत्व की अपेक्षा संगियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। मंजुबेन कहाँ होगा ये जघन्य अनुभाग विभक्ति? कौन से संगी को होगी? हाँ, कब होगी? कब होगी? कब होगी? हाँ, सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत समय में। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण है। ये संगियों में क्षुद्र भव ग्रहण, ये छोटे में छोटा काल। और उत्कृष्ट काल सौ पृथक्त्व सागर है। असंगियों में मोहनीय कर्म की जघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय। अभी संगियों में जघन्य तो दसवें गुणस्थान में होता है, असंगी में जघन्य कब होगा? बहुत अच्छा, सूक्ष्म लब्धि पर्याप्तक में से, एकेंद्रीय लब्धि पर्याप्त में से इसमें आया है जीव। जिसने जघन्य किया और जघन्य अंतर्मूर्त तक रहता है तो उसका अंतर्मूर्त में एक समय बाकी है, तब उसमें असंगी में उत्पन्न हुआ तो एक समय घटित हुआ। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, वही जघन्य के साथ जन्म लिया है, अंतर्मूर्त तक रहेगा तो उत्कृष्ट काल होगा उसका। तथा अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक है। ये असंगी में कैसे घटित करेंगे अजगन्य का एक समय, फिर से दोबारा कौन से लब्धि अपर्याप्त, सूक्ष्म लब्धि अपर्याप्त में से अन्य एक केंद्र में गया। हाँ फिर अजगन्य का एक समय घटित करना है आपको,
जो संगी पंचेंद्रिय है,
संगी है
वो अजगन्य के साथ एक समय, एक समय रहा, नहीं वो तो अजगन्य के साथ
हमको असंगी में अजगन्य का एक समय घटित करना है।
हाँ, असंगी में जिसने जगन्य किया था उसमें से अजगन्य हुआ और एक समय मरण करके वो संगी में उत्पन्न हो गया।
देखो एक निर्यादी सभी असंगी है, जब असंगी कहते हैं असंगी पंचेंद्रिय इतना ही मत सोचो।
अच्छा वो मैं पुत्र ना था कि असंगी पंचेंद्रिय
क्या कहते हैं, एक निर्यादी सारे असंगी हैं। अब जिस एक निर्यादी ने जगन्य कर दिया है, अंतर मुहूर्त तक तो जगन्य रहा और फिर अजगन्य हुआ एक समय के लिए और मरकर संगी में उत्पन्न हुआ है, तो उसका होगा। या संगी में से एकेंद्रीय में आया है,
अजगन्य के साथ आया है,
नहीं मगर वो अजगन्य उसके लिए टाइम लगेगा, थोड़ा जगन्य करने के लिए टाइम लगेगा, हत समुत्पत्ति होने के लिए। ये मरण के एक समय पहले उसने अजगन्य किया और संगी में उत्पन्न हुआ, तो ले सकते हैं इसको। यानी मरकर संगी में गया, विशेषार्थ संगी के सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान संभव होने से इसमें जघन्य अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा, तथा संगियों का जघन्य काल क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्त्व होने से इसमें अजघन्य अनुभाग का उक्त प्रमाण काल कहा। असंगियों में जिस प्रकार एकेंद्रियों में काल घटित करके बतलाए हैं, इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। जैसे एक इंद्रिय में से अन्य इंद्रिय वाले में गया, वैसे असंगी में से संगी में गया, क्योंकि एक इंद्रिय भी असंगी ही है, तो वहां उसने घटित जगन्य किया था, जगन्य के बाद अजगन्य किया, एक समय में मर गया। आहारकों में ने आहारक और अनाहारक, उसमें आहारकों में मोहनी कर्म की जगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, कब होगा, सूक्ष्म सांप्राय में अंतिम समय में। अजगन्य अनुभाग विभक्ति का जगन्य काल तीन समय कम क्षुद्र भव ग्रहण, एक क्षुद्र भव वाले भी आहारक हैं, तो आहारक का मिनिमम काल कितना है, आहारक बने रहने का मिनिमम काल
होगा ना,
यही कितना, एक तो क्षुद्र भव है जो उसका मिनिमम काल, अभी उसमें से पहले तीन मोड़ कम कर देना, तीन मोड़ सहित जन्मने वाला जी, तो तीन समय कम हुए, क्योंकि तीन समय तक अनाहारक रहा था, अब जाके आहारक हुआ, और क्षुद्र भव ग्रहण के बाद क्या हुआ उसका, फिर विग्रह गति से अन्य गति में चला गया,
अनारक हो
गया। यदि रुजु गति से जाता है तो आहारक का आहारक ही रहेगा, उसको फिर दोबारा अनाहारक करना है। क्षुद्र भव जो है विग्रह गति के पहले समय से उसको भव, उसमें वो सारे उसके आयु गिनेंगे हम, उसमें से पहले तीन समय तो मोड़ में चले गए, कार्मण का योग था, अनाहारक था, बाद में आहारक बना, इसलिए तीन समय कम कर दिए। तो अजघन्य अनुभाग विभक्ति का जघन्य काल तीन समय कम क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण है, और उत्कृष्ट काल आहारक पना बना रहे उत्कृष्ट तक काल तक, तो कितना है वो अंगुल का असंख्यात वा भाग है, जो कि असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल प्रमाण है। यह सामान्य से असंख्यात लिखा है, हमने देखा ना असंख्याता संख्यात, अनाहारकों में कार्मण काय योग के काय के समान भंग होता है, कार्मण काय योग चाहिए शब्द। ऊपर क्या लिखा है, अनाहारी कम्मय भंगो है। कार्मण काय योग में क्या है,
एक समय और तीन समय।
हाँ, देखो कार्मण काय में जघन्य किसके पहले में कितना काल है, कार्मण काय का एक समय से लेकर तीन समय तक, उसमें जघन्य किसको होगा, कार्मण काय योग में जघन्य किसको होगा,
जो सूक्ष्म
सूक्ष्म
लब्धि अपर्याप्त जो कोई भी अन्य गति में उत्पन्न होता है जघन्य,
जिसने जघन्य किया है सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त ने जघन्य किया, और वो जघन्य की अवस्था में मर कर मोड़ के साथ अन्य गति में जा रहा है, तो उसके कार्मण काय योग में भी जघन्य पाया जाएगा, उसके अलावा जो है वो सारे अजघन्य हैं। तो जघन्य भी का कम से कम काल एक समय, अधिक से अधिक तीन समय, और अजघन्य में भी ऐसा है। इस प्रकार जघन्य कालानुगम समाप्त हुआ, उत्कृष्ट का भी कालानुगम देखा, जघन्य का भी कालानुगम देखा। अब अंतरानुगम चलेगा, अब अंतर देखना है। तो ओग की अपेक्षा जघन्य का अंतर कितना होगा, मंजुबेन ओग की अपेक्षा जघन्य अनुभाग विभक्ति का अंतर कितना होगा, हाँ अंतर मूर्त होता आप क्या कहते हैं, एक समय होगा है नहीं, हाँ कायम क्या होगा,
भोग की अपेक्षा
जघन्य कब होगा,
अंतर होगा ही नहीं
अंतर मूर्त होगा,
होगा ही नहीं अंतर
होगा नहीं, क्यों नहीं होगा,
क्योंकि
शपक सूक्ष्म सांप्राय में जघन्य कर दिया, अंतर यानी दोबारा जघन्य होना चाहिए ना उसको ख्याल में आई बात, हाँ कायम कायम जघन्य ने अभी तो नष्ट ही हो गया है। हाँ आप कह रहे थे कायम रहेगा मगर हाँ देखो अभी हम देखेंगे यहाँ पर, पहले उत्कृष्ट का बता गया, अभी तक हम जघन्य को सोच रहे थे ना, पहले उत्कृष्ट का अंतर देखेंगे फिर जघन्य का देखेंगे। अंतरानुगम की अपेक्षा अंतर दो प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। यहाँ उत्कृष्ट का प्रकरण है, यानी उत्कृष्ट अनुभाग विभक्ति का मिनिमम अंतर और मैक्सिमम अंतर, जघन्य अंतर और उत्कृष्ट अंतर, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग निर्देश और आदेश निर्देश। ओग की अपेक्षा मौनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है, जघन्य अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अनंत काल है, हमने देखा था ना, जो अनुत्कृष्ट का मैक्सिमम काल है वो उत्कृष्ट का मैक्सिमम अंतर है। हमने क्या देखा, कोई संगी पंचेंद्रिय उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करता है, उत्कृष्ट करता है, उसके बाद वो अनुत्कृष्ट हो जाता है, संगी के रहते हुए अनुत्कृष्ट हो गया, फिर उसके बाद एकेंद्रीय में चला गया, लगातार अनुत्कृष्ट रहा, उसमें बीच में जघन्य किया वो सारा अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा, फिर जाके जब संगी में उत्पन्न होगा और उत्कृष्ट का बंध करेगा, तब हम कहेंगे बीच वाला सारा है वो उत्कृष्ट का अंतर हो गया, तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण हो जाएगा। अनंत काल है वह, अनंत काल असंख्यात पुद्गल परावर्तन प्रमाण है। अब अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है।
उत्कृष्ट किया
क्योंकि लगातार उत्कृष्ट लंबे काल तक नहीं रह सकता है। लगातार उत्कृष्ट रहे वो अनुत्कृष्ट का अंतर कहलाएगा। समझ में आई बात? कोई जीव अनुत्कृष्ट में था, उसने उत्कृष्ट का बंद किया तो उसका उत्कृष्ट अनुभाग हुआ, तो उत्कृष्ट अनुभाग लगातार कितने समय तक चलेगा? अंतर्मूर्त से अधिक नहीं चल सकता, वो अनुत्कृष्ट का अंतर हो जाएगा। इसलिए अनुत्कृष्ट का जो अनुभाग का जो अंतर है वो जघन्य और उत्कृष्ट भी अंतर अंतर्मूर्त है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यंचों में जानना चाहिए। सामान्य तिर्यंचों को क्यों लिया इसमें? अंतर्मूर्त के लिए लिया कि वो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के लिए लिया?
दोनों के लिए लिया।
दूसरा तो अन्य में भी घटित होगा अनुत्कृष्ट के लिए, ख्याल में आती बात? दूसरा जो अनुत्कृष्ट कहा वो तो मनुष्य में भी घटित होगा, नारकी में भी घटित होगा, परंतु ये जो दोनों ही कथन जिसमें घटित होते हैं, वो जो अनंत काल बताया असंख्यात पुद्गल परिवर्तन, वो तो तिर्यंचों में होता है, एक केंद्रियों में होता है। हाँ, इसलिए उसको तिर्यंचों में उसकी के समान कहा है। विशेषार्थ इस प्रकरण में मौन्य कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के अंतर काल का विचार किया गया है। जैसे एक संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि ने उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके उसका घात कर दिया तथा पुनः अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट अनुभाग बंद किया, इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर काल अंतर्मूर्त होता है। यानी एक अंतर्मूर्त के लिए अनुत्कृष्ट रहा फिर उत्कृष्ट कर दिया। यदि वह एकेंद्रीय पर्याय में उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके अनंत काल तक एकेंद्रीय ही रहा आवे और उसके बाद संगी पंचेंद्रीय होकर उत्कृष्ट अनुभाग बंद करके उत्कृष्ट अनुभाग वाला हो जाए, तो उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर असंख्यात पुद्गल परावर्तन होता है तथा अनुत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य और उत्कृष्ट अंतर काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग अंतर्मूर्त से अधिक काल तक नहीं उपलब्ध होता है। जो मैक्सिमम वाला है भले जी उसका बंद करे तो भी अनुभाग उसका अंतर्मूर्त तक ही बना रहेगा, बाद में वो नियम से घटेगा। ये तो ओग में बता दिया। आदेश की अपेक्षा नारकियों में मौनी के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतरकाल कितना है? जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागर, क्योंकि नरक में शुरू में उसने उत्कृष्ट बंद किया फिर अंत में जाके किया, बीच में अनुत्कृष्ट रहा, तो उत्कृष्ट का अंतर कुछ कम 33 सागर।
ये कुछ कम में पहला अंतर्मूर्त कम?
हाँ, पहला अंतर्मूर्त और फिर बाद में फिर उसमें लाना है ना
वापस उत्कृष्ट, लास्ट समय में भी हो सकता है।
हाँ, लास्ट समय भी हो सकता है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओग के समान है। कितना कहा था ओग में? अंतर्मूर्त जघन्य भी और उत्कृष्ट भी। हमने देखा था ना वो जो कथन है वो तो चारों गतियों में घटित होगा, परंतु असंख्यात पुद्गल परावर्तन जो है वो तो तिर्यंचों में ही घटित होगा। इसी प्रकार सब नारकियों में अंतरकाल होता है, किंतु इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी, इन तीनों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर पूर्व कोटि पृथक्त्व प्रमाण है। उसकी जो उत्कृष्ट स्थिति है, शुरू में एक बार किया उत्कृष्ट, फिर अनुत्कृष्ट ही रहा और फिर अंत में जाके फिर उसने उत्कृष्ट किया। अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओघ की तरह है, यानी जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त है। सामान्य मनुष्य, मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में पंचेंद्रिय तिर्यंच त्रिक के समान भंग है, यानी उसमें भी यहाँ जघन्य उत्कृष्ट की बात चल रही ना, उत्कृष्ट में जो अंतर है, जो मिनिमम तो अंतर्मूर्त है और अधिक से अधिक पूर्व कोटि पृथक्त्व। यहाँ पूर्व कोटि पृथक्त्व में तीन पल्ले क्यों नहीं लिया?
वहाँ पे तो उत्कृष्ट अनुभाग का बंद होता ही नहीं,
उत्कृष्ट अनुभाग बनता भी नहीं है और उत्कृष्ट अनुभाग वाला जीव वहाँ जन्मता भी नहीं, इसलिए पूर्व कोटि पृथक्त्व जितनी जहाँ है उतनी उसमें ले लेना। जैसे हमने देखा ना, सामान्य मनुष्य और मनुष्य पर्याप्त और मनुष्य नहीं, जिसमें जितनी पूर्व कोटि होती है हमने हमेशा हिसाब लगाया, वैसे उतने ही लेना। वो तीन पल्ले वाली बात वहाँ नहीं लेने, क्योंकि हम हमेशा अंतिम भव तीन पल्ले वाला लेते थे, वो यहाँ घटित नहीं होगा। उत्कृष्ट के अंतर में उसको नहीं लेना। हम देखो पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में, ये मनुष्य की बात हो गई, पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। क्यों?
अंतर्मूर्ति है और उत्कृष्ट करके जाएगा तो
नहीं। देखो उत्कृष्ट करेगा नहीं, वो उत्कृष्ट कब होगा? जो संगी में से उत्कृष्ट के साथ इसमें आया है
वापस,
तो एक बार उत्कृष्ट है, अनुत्कृष्ट होने के बाद फिर तो उत्कृष्ट नहीं करेगा। और जो अनुत्कृष्ट के साथ ही आया है वो अनुत्कृष्ट ही रहेगा, उसके भी उत्कृष्ट करने का सवाल नहीं है,
अंतर नहीं होगा,
अंतर नहीं होगा। उस मार्गणा की अपेक्षा उत्कृष्ट तो होगा, अनुत्कृष्ट भी होगा, परंतु उसमें अंतर नहीं होगा। अंतर कब होता है? जब दो बार उसमें होना चाहिए उत्कृष्ट, तो बीच में अंतर पड़ेगा। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों और आनंद स्वर्ग से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक के देवों में भी समझ लेना चाहिए। आनंद से लेकर सर्वार्थ सिद्धि तक हमने वो देखा था, वो सारे शुक्ल लेशा वाले हैं, उसमें भी अनुभाग है, वो बढ़ेगा नहीं, उसमें जितने अनुभाग के साथ आया है उतना ही वहां रहेगा। यानी घट तो सकता है अनंतानुबंधी की विश्वविजना में, परंतु वो तो अनुत्कृष्ट ही कहलाएगा, अनुत्कृष्ट ही था, अनुत्कृष्ट ही रहा, उत्कृष्ट तो हाँ, यानी उसमें अंतर नहीं होगा। उनकी अपेक्षा जो उत्कृष्ट के साथ वहां गया है
उसका अनुत्कृष्ट हो सकता,
अनुत्कृष्ट होगा
पीछे पर वापस,
पर वापस उत्कृष्ट नहीं होगा। सामान्य देवों में, वो दवों में हुआ, देवों में मोहिनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, ये बंधक की अपेक्षा, क्योंकि सामान्य देव लिए है तो उत्कृष्ट अनुभाग का बंद करेंगे, फिर अनुत्कृष्ट होगे, फिर अंतर्मूर्त में उत्कृष्ट का बंद करेंगे। और उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 18 सागर है, 18 हुआ है, 18 करना। देखो ये कौन से लिए, सहस्रार तक, क्यों? ऊपर शुक्ल लेशा है तो उसके अनुभाग बढ़कर नहीं बंधेगा,
ये गाता युष्क वाला 18 से ज्यादा वाला
लिया, इसलिए कुछ अधिक लिया ना, गाता युष्क वाला सहस्रार वाला कुछ अधिक 18 करना, 18 अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओघ के समान है, यानी अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त। इसी प्रकार भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। ये जो सामान्य देवों में बात हुई है वो किसकी अपेक्षा? भवनवासी से सहस्रार तक के देवों में। क्योंकि वहाँ मिथ्या दृष्टि तो ग्रवेक में भी है, परंतु आनंद से लेकर ऊपर शुक्ल लेशा होती है और वहाँ ये अनुभाग बढ़ाना ऐसा नहीं होता। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक में अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति लेनी चाहिए। उत्कृष्ट अंतर जो हम देखते हैं ना, शुरुआत में वहां जाके उसने उत्कृष्ट बंद किया, अंतर्मूर्त में अनुत्कृष्ट हुआ, फिर बीच में जितनी लाइफ स्पाइन थी उस समय उसने अनुत्कृष्ट ही रहा वो, फिर लास्ट में जाके उत्कृष्ट का बंद किया। तो उत्कृष्ट का अंतर अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति में कुछ कम इतने प्रमाण हो जाएगा। विशेषार्थ
भवनवासी ज्योतिष की कितनी उत्कृष्ट आयु है?
वो तो पल्लव में है ना। एक सागर किसकी है?
ज्योतिष की है।
वो तो देखना पड़ेगा उसकी, हर एक की अलग अलग, जो कुछ थोड़ी वेरिएशन है। उसे जो अंतरकाल घटित करके बताया है, उसी प्रकार सामान्य नार की, सातों पृथ्वियों के नार की, पंचेंद्रिय तिरियंच त्रिक और मनुष्य त्रिक में घटित कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट अनुभाग के उत्कृष्ट अंतर में विशेषता है। ओक से जघन्य अंतर कितना देखा था हमने? अंतर्मूर्त, वो तो सब में घटित होगा, परंतु उत्कृष्ट अंतर में विशेषता होगी। बात यह है कि इन सब मार्गणाओं की स्थिति भिन्न भिन्न है। उस मार्गणा में रहने का जो काल है, उत्कृष्ट काल, वो अलग अलग है। इसलिए जहां जो स्थिति हो उससे कुछ कम, वहां उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। शुरू में उत्कृष्ट हुआ, बीच में अनुत्कृष्ट रहा, लास्ट में फिर उत्कृष्ट हुआ, अपनी अपनी स्थिति में कुछ कम कहना। पंचेंद्रिय तिरियंच अपर्याप्त आदि मार्गणाओं में अन्य पर्याय से उत्कृष्ट अनुभाग लेकर आता है, वहां उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। क्या कहते हैं? यानी उसकी सत्ता तो है उत्कृष्ट की, क्योंकि अन्य पर्याय से आया, परंतु उसकी प्राप्ति यानी वहां फिर से उसको पाना, वो संभव नहीं है। इसलिए इनमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के अंतर का निषेध किया है, वो अनुभाग होने का निषेध नहीं किया है। उत्कृष्ट भी पाया जाएगा, अनुत्कृष्ट भी पाया जाएगा, पर वहां से कोई उस पर्याय में रहते हुए कोई उत्कृष्ट का बंद नहीं करेगा। देवों में और सहस्रार कल्प तक के देवों में नारकियों के समान स्पष्टीकरण है। अब ये चार गति की हो गई बात। अभी इंद्रिय की अपेक्षा, एकेंद्रिय उनके सभी बादर सूक्ष्म पर्याप्त और अपर्याप्त एकेंद्रियों में तथा विकलेंद्रियों में और उनके सभी पर्याप्त अपर्याप्त जीवों में मौन्य कर्म के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है। यहाँ ऐसा ही लेना है, इन पर्याय में जो पंचेंद्रिय संगी उत्पन्न हुआ है उत्कृष्ट अनुभाग के साथ, तो वहां तो उसका घात होता रहेगा, बाद में फिर से दोबारा उत्कृष्ट नहीं होगा। और जो अनुत्कृष्ट से साथ आया वो तो लगातार जगन्य भी हुआ तो उसको अनुत्कृष्ट ही कहेंगे हम, अनुत्कृष्ट का अनुत्कृष्ट ही रहेगा। इसलिए उसमें अनुभाग का अंतर नहीं है। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में मौन्य कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर जघन्य से अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट से पंचेंद्रियों में पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 1000 सागर ये पंचेंद्रियों का उत्कृष्ट उसकी काय स्थिति कहेंगे, काल कहेंगे। और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में 100 पृथक्त्व सागर हैं, अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओघ के समान है, इन्हें अंतर्मूर्त है। पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में मौनी के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है, अपर्याप्तकों में चाहिए। पंचेंद्रिय अपज्जत ऊपर देखो चौथी लाइन में, पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में विशेषार्थ। एकेंद्रिय विकलेंद्रिय उनके भेद प्रभेदों में तथा पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में उसी पर्याय में उत्कृष्ट अनुभाग की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए यहाँ भी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग के अंतर का निषेध किया है, यानी वो पंचेंद्रिय पर्याप्तों में से उत्कृष्ट अनुभाग के साथ यहाँ जन्म लेंगे तो बाद में उसका अनुत्कृष्ट होगा, उत्कृष्ट दोबारा नहीं हो सकता। पंचेंद्रिय द्विक में नारकियों के समान स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। पंचेंद्रिय द्विक यानी पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तक, मात्र इनकी काय स्थिति भिन्न होने से इनमें उत्कृष्ट अनुभाग का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अपनी अपनी काय स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। हमने देखा था ना ऊपर पूर्व कोटि पृथक्त्व से 1000 सागर और 100 पृथक्त्व सागर। इसी प्रकार आगे भी मार्गणाओं में यथासंभव अंतरकाल घटित कर लेना चाहिए, जहाँ विशेषता होगी उसका स्पष्टीकरण करेंगे, यानी यही बात जहाँ घटित होती वहाँ बताएंगे और जहाँ कोई अन्य विशेषता है वहाँ आगे भी चलकर बताएंगे। काय की अपेक्षा, ये काय मार्गणा में पांचों स्थावर कायों में एकेंद्रिय के समान भंग होता है। हाँ, इसमें है जो उत्कृष्ट का और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो इन कायिकों में आए हैं, त्रस कायिक में से इनमें आए हैं, तो उत्कृष्ट तो होगा परंतु अंतर नहीं होगा। त्रस और त्रस पर्याप्तकों में मोहनीय कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है, जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर त्रसों में पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागर और त्रस पर्याप्तकों में केवल 2000 सागर, यानी उसके शुरू में उत्कृष्ट किया फिर जाके अंत में उत्कृष्ट किया तो बीच में इतना काल चला गया। अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओग के समान है, यानी अंतर्मूर्त है। त्रस अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों के समान भंग है, यानी उसमें अंतर नहीं है, जिस अनुभाग के साथ आया है कम तो होगा, दोबारा उत्कृष्ट नहीं होगा। योग की अपेक्षा, कहा नीचे से तीसरी लाइन, हाँ त्रसों में यानी सामान्य त्रसों में पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागर और त्रस पर्याप्तकों में मात्र 2000 सागर। अब योग की अपेक्षा, पांचों मनोयोगी, पांचों वचन योगी, सामान्य काय योगी, औदारिक काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी, वैकृत काय योगी, वैकृत मिश्र काय योगी, कार्मण काय योगी, आहार काय योगी करना, और आहारक मिश्र काय योगियों में उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर नहीं है।
ये औदारिक काय योग पे तो होगा ना अंतर,
देखो उत्कृष्ट कब होगा
औदारिक काय योग में, जो पंचेंद्रिय को जो औदारिक काय योग है वो एक बार उत्कृष्ट करके
उत्कृष्ट किया
के अंत में वापस दूसरी बार उत्कृष्ट कर सकता है
तो उसका औदारिक काय योग कायम रहेगा। यहाँ क्या कहते अंतर, अंतर चाहिए ना हमको। औदारिक काय योग में आया है वहाँ उसने उत्कृष्ट किया हुआ है या उत्कृष्ट के साथ औदारिक में आया है, अंतर्मूर्त तक तो अनुत्कृष्ट रहेगा ही, जब जाके दोबारा करेगा अपन उतने काल में योग पलटेगा, यानी योग का काल छोटा है। तो उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट का अंतर नहीं है, इतनी विशेषता है कि काय योगियों में अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओग के समान है। काय योगी रहते हुए अनुत्कृष्ट का अंतर कितना होता है, अंतर्मूर्त। अनुत्कृष्ट था, उत्कृष्ट हुआ और फिर अनुत्कृष्ट हुआ।
अच्छा, वो अंतर बहुत
छोटा, वो छोटा वाला होगा। उत्कृष्ट में रहने का काल छोटा है। विशेषार्थ, एक योग के रहते हुए दो बार उत्कृष्ट या अनुत्कृष्ट अनुभाग संभव नहीं है। इसलिए इनमें अंतर का निषेध किया है। मात्र काय योग में अनुत्कृष्ट अनुभाग की प्राप्ति दो बार संभव होने से, केवल काय योग इतना ही लिया अपना क्राइटेरिया, इसमें अनुत्कृष्ट अनुभाग का अंतर ओग के समान बन जाता है। वेद की अपेक्षा, देखो औदारिक काय योग में नहीं लिया था, मात्र काय योग में लिया था, तो ऐसा ले सकते हैं ना, अनुत्कृष्ट था
नहीं औदारिक वेद, ये तो पंचेंद्रिय में ही होगा, पर ये जो उत्कृष्ट का अंतर है, उत्कृष्ट बन
अनुत्कृष्ट का अंतर चाहिए। हाँ, तो अनुत्कृष्ट का हो सकता है, उत्कृष्ट का नहीं हो सकता है। हाँ, यानी पहले अनुत्कृष्ट था
और उत्कृष्ट किया,
उत्कृष्ट किया,
अंतर्मुख तक किया और वापस,
और फिर वापस अनुत्कृष्ट हो गया,
तो वो उसके उससे औदारिक
हो सकता है। वेद की अपेक्षा स्त्री वेदियों में मौनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है? स्त्री वेदियों में मौनी कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग का अंतर कितना है? जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट अंतर सौ पृथक व पल्य है। यानी उत्कृष्ट अनुभाग का बंद तो श्रीवेदी भी करेंगे, तो जैसे अन्यत्र जगन्य अंतर अंतर्मूर्त है वैसे यहाँ भी होगा, और उत्कृष्ट अंतर उसके अपनी स्थिति प्रमाण है। अनुत्कृष्ट अनुभाग का जगन्य और उत्कृष्ट अंतर ओग के समान, यानी अंतर्मूर्त
अंतर्मूर्त, ये जो
अनुत्कृष्ट का अंतर सब जगह अंतर्मूर्त ही लिया। ये कल पढ़ेंगे क्योंकि इसका विशेषार्थ भी उसके साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। वेद की बात कल पढ़ेंगे फिर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो। अश्विन भाई,
नमो रियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उच्चायनम, नमो लोहे सुप्रसावणम, नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उच्चायनम, नमो लोहे सुप्रसावणम, नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो उच्चायनम।